बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वालिहि ताहिरीन अस्सलामु अलैकुम। बेसत खबरनामे में खुश आमदीद। आज अप्रैल की 12 और रजब अल मुरज्जब की 14 तारीख है। दिन भर की अहम तरीन कौमी और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ अम्मार अज़ली। गवादर एयरपोर्ट के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब किए गए धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए 5 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। भारी मकदार में बारूदी मवाद और असलहा बरामद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानेहे मॉडल टाउन में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तमाम पुलिस अहलकारों को जमानत पर रिहा कर दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा की माइग्रेशन एजेंसी ने अफ्रीकी तारिकीन वतन की लीबिया के गुलाम फरोशी के बाजार में तिजारत पर नोटिस ले लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने शाम पर खुली जाहिरियत का इरतकाब करने के 4 दिन बाद शाम की जंग में बराह रास्त शमूलियत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। साबिक ईरानी सदर अहमदी निजाद ने रवां साल मई में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इराकी जंगी तैयारों ने मोसल के दाएं किनारे पर दाइश को तेल पहुंचाने वाले कई टैंकर्स को तबाह कर दिया है। गासिब सहूनी रियासत ने हमास के 2 अहम रहनुमाओं को अगवा करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टेलरसन की रूसी हम मनसब से मुलाकात। रूस ने खबरदार किया कि शाम जैसे हमले तकरार नहीं होने चाहिए। यूनिसेफ ने खदशा जाहिर किया है कि दहशतगर्द तंजीम बोको हराम की जानिब से बच्चों को खुदकुश हमलावरों के तौर पर इस्तेमाल करने में इजाफा हुआ है। ब्राजील में नए सदर को करप्शन स्कैंडल का सामना, सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शाम में मजीद कीमियाई हमलों से मुतालिक अमरीका और दहशतगर्दों की नई साजिश से पर्दाफाश कर दिया। और ह्यूमन राइट्स वॉच के बकौल बहरीन में पुरम मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और सिक्योरिटी अहलकारों के हमलों में इजाफा हुआ है। और अब खबरें तफसील के साथ। गवादर के इलाके में एयरपोर्ट के करीब मोटरसाइकिल धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने देसी साख्ता बम एक मोटरसाइकिल में नस्ब कर रखा था, जबकि मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी की गई थी, जिसके जरिए आम शहरियों को निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में सड़क के करीब वाक़े दुकानों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकारों ने जाए वकूअ पर पहुँच कर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। धमाके के बाद गवादर शहर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। याद रहे कि चाइना पाक इक्तसादी राहदारी के तनाजुर में गवादर को मरकजी हैसियत हासिल है और वहाँ मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबे जारी हैं। कराची रेंजर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की तरबियत याफ्ता 5 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि इनके कब्जे से भारी मकदार में बारूदी मवाद और असलहा बरामद हुआ है।
तफसीलात के मुताबिक कराची में सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कर्नल कैसर का कहना था कि कराची को बड़ी तबाही से बचाते हुए अफगानिस्तान और दाइश से तरबियत याफ्ता 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 8 किलो बारूद, 1 खुदकुश जैकेट और 4 बालबम डेटोनेटर्स और 1 लैपटॉप से रैकी के शवाहद मिले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद कहना था कि मुलजमान इससे पहले कई तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस रह चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर रेंजर्स अहलकारों पर हमले शामिल हैं। ताहम उन्होंने इस आज़म का इरादा किया कि कराची में क़याम अमन तक रेंजर्स की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानेहे मॉडल टाउन में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तमाम पुलिस अहलकारों को जमानत पर रिहा कर दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानेहे मॉडल टाउन केस की समाअत हुई। इस मौके पर अदालत ने पुलिस अहलकारों की जानिब से दायर जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इंस्पेक्टर आमिल सलीम समेत इलीट फोर्स के 4 अहलकारों को फौरी तौर पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। तहम मुकदमे की समाअत अदालत में जारी रहेगी। वाजे रहे कि जून 2014 में मॉडल टाउन में वाक़ मिनहजुल कुरान के मरकज के बाहर से रुकावटें हटाने के मामले पर पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़प हो गई थी, जिसमें पुलिस की फायरिंग से मिनहजुल कुरान के 14 कारकुन जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए थे। اقوام متحدہ کی مائیگریشن ایجنسی نے افریقی ممالک کے تارکین وطن کی غلام فروشی کی مارکیٹ میں افزائش پر نوٹس لے لیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی لیبیا کی غلامی کی مارکیٹوں میں تجارت ہوتی ہے، پھر انہیں رہا کرنے کے عوض تاوان لیا جاتا ہے۔
لیبیا میں اقوام متحدہ کے سربراہ کے مطابق تارکین وطن کی $200 سے $500 تک قیمت لگائی جاتی ہے اور 2 سے 3 مہینے تک خریدنے والے کے پاس رہتا ہے۔ افریقی تارکین وطن غلاموں کے بازار میں جانوروں کی طرح بیچے جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ لیبیا میں انسانی سمگلنگ کرنے والی قوتوں کے اثر و رسوخ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان غلاموں میں سے اکثر سے کھیتی باڑی اور تعمیراتی امور کی انجام دہی کرائی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض کو کام کی اجرت بھی دی جاتی ہے، تاہم اکثر سے اجرت کے بغیر ہی کام لیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے کے ایک مبصر کا کہنا تھا کہ جو تارکین وطن انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ ان مہاجرین کو افلاس، جنسی تشدد اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ مہاجرین، جن میں سے اکثر کا تعلق نائجیریا، سینیگال اور گیمبیا سے ہے، غربت کی وجہ سے غیر قانونی راستے سے یوروپ پہنچنے کی کوشش میں پکڑے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال کے آغاز سے اب تک 26,000 سے زائد تارکین وطن اٹلی کا رخ کر چکے ہیں، جن میں سے 600 سے زائد افراد سمندر میں غرق ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ نے شام پر کھلی جاہریت کا ارتکاب کرنے کے 4 دن بعد شام کی جنگ میں براہ راست شمولیت کے امکان کو مسترد کر دیا۔ شام پر امریکی جارحیت کے چند روز بعد ایران اور روس کی جانب سے دی جانے والی دھمکی کے نتیجے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی موقف کو بدلتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ شام میں براہ راست طور پر جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ غیر ملکی خبر رساں جریدے کے مطابق ان خیالات کا اظہار میڈیا نمائندوں کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کیا گیا۔ ٹرمپ نے اس حملے کے کچھ ہی دیر بعد دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ شامی فوج نے عام شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں اور واشنگٹن نے اسی ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے کیمیائی ہتھیار کا استعمال کیا گیا تھا۔ امریکہ کی اس کھلی جاہریت سے یہ قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی تھیں کہ واشنگٹن شام میں طاقت کے ذریعے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شام میں امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے شامی شہر ادلب کے الشعیرات ایئر بیس پر 60 میزائلوں سے حملہ کیا تھا، جس کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ روس، ایران، عراق، یونان، وینزویلا، چین، شمالی کوریا سمیت متعدد ممالک نے اس جاہریت کی مذمت کی، لیکن عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مبصرین نے کہا کہ شیخون کیمیائی حملے کی تحقیقات مکمل ہوئے بغیر کسی ملک کا خود سے آ کر فیصلہ کرنا ایک بچگانہ حرکت ہے اور اس مسئلے کا مستقل راہ حل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے شام پر امریکی حملے کے خلاف شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شامی فوج کے پاس کیمیکل ہتھیار نہیں ہے، جس کی تصدیق عالمی تنظیم نے بھی کی ہے۔ دوسری جانب 2 سال قبل یون انسپیکٹرز کی ایک ٹیم نے بھی شامی فوج کو کیمیائی ہتھیاروں سے پاک قرار دیا تھا۔ ایران کے سابق صدر احمدی نژاد نے رواں سال مئی میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق الیکشن حکام احمدی نژاد کے کاغذات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران میں اکثریت صدر کے منصب پر کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتی ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو کر سخت زبان میں جواب دے سکے۔ امریکہ سمیت دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے کرنے والے ایران کے موجودہ صدر حسن روحانی بھی متوقع طور پر دوبارہ صدارتی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ احمدی نژاد نے 17 جون 2005 کو ایران کے 6ویں صدر کی حیثیت سے ذمہ سنبھالی تھیں اور 12 جون 2009 کو دوسری مدت کے لیے ایران کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ احمدی نژاد 2013 میں عہدے کی مدت مکمل ہونے کے بعد الگ ہوئے تھے، جس کے بعد حسن روحانی ایران کے 7ویں صدر بن گئے تھے۔ عراق میں داعش نابودی کے قریب آ پہنچی ہے۔ عراقی جنگی طیاروں نے داعش کو تیل پہنچانے والے کئی ٹینکروں کو تباہ کر دیا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حشد الشعبی کا کہنا ہے کہ عراقی جنگی طیاروں نے موصل کے دائیں کنارے میں داعش کو تیل پہنچانے والے کئی ٹینکروں کو تباہ کر دیا ہے۔ حشد الشعبی کے بیان کے مطابق عراقی فوج کی بمباری میں تیل سے بھرے ہوئے کئی ٹرکوں سمیت بم بنانے والا ایک کارخانہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ قادمون یا نینوا فورس نے البرموک اور السورا نامی علاقوں پر بمباری کر کے داعش کے کئی بختر بند گاڑیوں کو تباہ کیا ہے۔ रिपोर्ट के मुताबिक इराकी फोर्सेज ने सनती इलाके गानम सैयद में कार्रवाई करके एक बम बनाने वाले कारखाने को भी तबाह किया है। वाजे रहे कि मूसल बगदाद के बाद इराक का दूसरा बड़ा शहर है जिस पर दाइश ने कब्जा कर लिया था। तहम इराकी फौज ने मूसल के अक्सर इलाकों को दहशत गर्दों के कब्जे से आज़ाद करा लिया है। मूसल ऑपरेशन में इराकी फौज और अवामी रजाकार फोर्सेज के हज़ारों जवान हिस्सा ले रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों इराकी फौज के एक आला अफसर ने ऐलान किया कि 2014 में इराक का 40% हिस्सा दाइश के कब्जे में था, लेकिन अब दाइश के पास इराक का 7.6% से भी कम हिस्सा रह गया है। याद रहे कि इराकी वजीर अजम हैदर अल इबादी ने 17 अक्टूबर 2016 को मूसल शहर की दहशतगर्द गिरोह दाइश से आज़ादी के लिए वसी पैमाने पर कार्रवाइयों के आगाज़ की खबर दी थी।
गासिब सेहूनी रियासत ने हमास के दो अहम रहनुमाओं को अगवा करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक गासिब सेहूनी फोर्सेज ने आज सुबह फलस्तीन के शहर अलबीरा में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जारी रखते हुए हमास के दो आला ओहदेदार फायज़ अहमद वर्दा और अहमद अतफान को अगवा करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर लिया है। इस महीने गासिब सेहूनी रियासत की जानिब से हमास के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का ये दूसरा बड़ा वाकया है। दो हफ्ते कबल गासिब इसराइलियों ने अलकस्ताम ब्रिगेड के कमांडर और इसराइली जेलों के साबिक कैदी माजिल अल-फखा को गजा शहर के करीबी इलाके तल अल-हुवा में शहीद कर दिया था, जिसके बाद हमास के सरबरा इस्माइल हनिया ने मुजम्मती बयान में कहा कि हम जल्द ही माजिन फखा की शहादत का बदला लेंगे। ख्याल रहे कि यकम अक्टूबर 2015 के बाद से अब तक इसराइली फौज सैकड़ों फलस्तीनियों को मजाहमती कार्रवाइयों के इल्ज़ाम के तहत गोलियां मारकर शहीद कर चुकी है। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक 285 से ज़ायद फलस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं।
अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टेलरसन अपने पहले सरकारी दौरे पर मास्को पहुंच गए हैं, जहां वो अपने रूसी हममनसब सरगई लावरोफ समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। AFP के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टेलरसन G7 वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत के बाद पहले सरकारी दौरे पर रूस पहुंचे हैं, जहां वह रूसी हममनसब सरगई लावरोफ समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब शाम के मामले पर अमरीका और रूस के दरमियान मामलात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। रूसी वजीर खारजा ने अपने एक बयान में शाम पर अमरीकी हमले को गैर कानूनी करार देते हुए अमरीका को खबरदार किया कि आइंदा ऐसे हमले तकरार नहीं होने चाहिए। उधर रूसी वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि रूस अमरीका से बामानी मुजाकरात चाहता है, इसीलिए वाशिंगटन को भी रिवायती इल्ज़ाम तराशी से परहेज करना होगा। बयान के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा से दहशतगर्दी, शाम और यूक्रेन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। तहम अभी यह वाजे नहीं है कि रूसी सदर अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे या नहीं। रूसी सदर के तर्जुमान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि इस तरह की कोई मुलाकात ज़ेर गौर नहीं है। यूनिसेफ की जानिब से जारी की गई एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम बोको हराम की जानिब से साल 2017 में बच्चों को खुदकुश हमलावरों के तौर पर इस्तेमाल करने में इजाफा हुआ है।
यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बोको हराम नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून और चाड में सरगर्म है। बोको हराम ने इस साल के इब्तदाई 3 माह में 27 बच्चों को खुदकुश हमलावर के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी इब्तदाई 3 माह में 9 बच्चों को खुदकुश हमलावर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जबकि साल 2016 में 30 बच्चों को खुदकुश बमबार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिनमें ज़्यादातर लड़कियाँ शामिल थीं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि बोको हराम गुज़िश्ता 8 साल से दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम दे रही है, जिसमें अब तक कम से कम 20,000 लोग मारे जा चुके हैं।
ब्राज़ील के नए सदर की हुकूमत को बड़े करप्शन स्कैंडल का सामना है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 वजीरों और 3 गवर्नरों समेत 100 से ज़ायद सियासतदानों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया।
गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ब्राज़ील में 108 सियासतदानों के खिलाफ करप्शन केसेस खुल गए। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने 29 सेनेटर्स और दोनों ईवानों के स्पीकरों समेत 42 अराकीन के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म दे दिया। सियासतदानों पर सरकारी तेल कंपनी के ठेके बड़ी तामीराती कंपनी को देने और रिश्वत लेने के इल्ज़ाम हैं। तामीराती कंपनी के 77 साबिक मुलाजमीन सियासतदानों को करोड़ों डॉलर रिश्वत देने का एतराफ़ कर चुके। सदर के चीफ ऑफ स्टाफ, वजीर खारजा और इंफ्रास्ट्रक्चर के वजीर भी तहकीकात की जद में आ गए।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शाम में मजीद कीमियाई हमलों से मुतालिक अमरीका और दहशतगर्दों की नई साजिश से पर्दाफाश किया है।
रूसी मीडिया के मुताबिक दारुलहुकूमत मास्को में अपने इटली के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर व्लादिमीर पुटिन का कहना था कि वो शाम में अमरीका और दहशतगर्दों की जानब से मजीद खुद साख्ता कीमियाई हमलों की साजिश से आगाह है। उन्होंने कहा कि ऐसी इतलात मिली है कि अमरीका शाम पर दोबारा हमला करने का इरादा रखता है, जबकि दहशतगर्द ग्रोह मजीद खुद साख्ता कीमियाई हमले करके उसका इल्ज़ाम शामी हुकूमत पर लगाने की कोशिश करेंगे। रूसी सदर का कहना था कि दहशतगर्द अनासर इदलिब जैसा कीमियाई हमला शाम के दीगर इलाकों खास तौर पर जनूबी दमिश्क में करना चाहते हैं, जिसका इल्ज़ाम शाम की हुकूमत पर लगाया जाएगा। शाम पर अमेरिका के मिसाइल हमले की जानेब इशारा करते हुए सदर व्लादिमीर पुटिन ने कहा कि ये हमला सन 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले की याद दिलाता है, जब अमेरिकी हुकाम ने इराक में मिलने वाले फर्जी कीमियाई हथियार सलामती कौंसिल के सामने पेश किए थे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि दहशतगर्दी दुनिया को दरपेश बुनियादी खतरा है और इसके खात्मे के लिए आलमी सतह का तआवुन ज़रूरी है। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो शाम के शहर खान शेखोन पर कीमियाई हमलों की मुकम्मल और गैर जानबदाराना तहकीकात कराए।
और बहरीन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि आले खलीफा हुकूमत ने सियासी मुखालिफीन की गिरफ्तारियों समेत पुरअमन मुजाहरीन पर रिकॉर्ड हमले किए हैं।
बहरीन में आले खलीफा हुकूमत का हुकूमत मुखालिफीन के साथ नारवा और गैर मुनसिफाना फैसले सुलाई जाने का सिलसिला जारी है। बहरीनी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते बहरीनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 17 पुरअमन बहरीनी शहरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक बच्चा भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता महीनों के दौरान बहरीनी सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से सियासी नाकदीन और पुरअमन मुजाहरीन पर क्रैकडाउन में इजाफा हुआ है, जिनमें से सैकड़ों अफराद को बगैर कानूनी जवाब पेश किए गिरफ्तार किया गया है। बहरीन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स समेत दीगर बैरुल अक्वामी इंसानी हकूक की तंजीमों ने बहरीनी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो आज़ादी इजहार राय की पाबंदी समेत अवाम को पुरअमन एहतजाज के हक पर आयद गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाए। वाज़ेह रहे कि बहरीन में 2011 से पुरअमन मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुजाहरीन मुल्क में सियासी असलाहत का मुतालबा कर रहे हैं।
अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामे तक इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी टीवी चैनल। अल्लाह हाफिज़।